ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, रांची से राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय और ईचागढ़ से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के हरेलाल महतो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हुआ। इसमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और इसके अलावा केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय में 1-1 सीट शामिल है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गोड्डा में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर जिले की सारठ विधानसभा में रंगा सिरसा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर झारखंड की पहचान बदलने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के 18 केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। नव उद्घाटित 18 जनऔषधि केंद्र बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थित स्टेशनों पर संचालित किए जाएंगे। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि के 50 केंद्रों की शुरूआत की जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज स्पोर्ट्स एरिना, जांडा चौक स्कूल और गेम जोन चरण 2 सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और हूची मिन नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के अध्यक्ष डॉ गुएन जुआन थांग से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में वित्त आयोग के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय धन आवंटन से विकास है। सम्मेलन का आयोजन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का 43वां संस्करण कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय 2047 में विकसित भारत है। इस वर्ष फोकस राज्य झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। पीवी सिंधु जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।